सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति। रोज का नया दिन, नए दृश्य, कल का दृश्य, आज का दृश्य, तरह से ड्रामा में जैसे जैसे समय व्यतीत होता है वैसे वैसे अनेक दृश्य हमारे सामने आते हैं। आज 77 वर्ष हो गए जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाकर इस यज्ञ की स्थापना की। यज्ञ को संभालने के लिए हमेशा ही पवित्र ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। बाबा ने भी न केवल यज्ञ रचा पर एक भट्टी भी बनाई जिसने जब बाबा ने ये शुरू किया संदेश लेना तो बहुत ही परिवार, बहुत परिवार उनको भी ये प्रेरणा मिली, संकल्प आया कि हम भी समर्पित हों। तो कुछ परिवार आए, कुछ छोटे बच्चे आए, उसमें भिन्न भिन्न आयु वाले सब आए, समर्पित हुए। सब परिवार के परिवार समर्पित होते थे। तो हमारी दादी प्रकाशमणि जी, 6 बहने और माँ बाप सब समर्पित हुए। 6 बहने कभी पिछले हफ्ते एक थोड़ा ही टाइम हुआ है जब कुंज दादी ने शरीर छोड़ा। वो प्रकाश को प्रकाशमणि दादी जी की जो बहन थी उनकी बेटी थी। वैसे कई संबंध उनके थे, कई सब समर्पित हुए। और यज्ञ को सफल बनाने के लिए, उसकी पालना करने के निमित्त बाबा ने मामा को निमित्त बनाया कुछ समय के बाद। और हरेक आत्मा जो भी उस समय पर समर्पित हुई तो सबका कुछ एक अनोखा, अलौकिक और विशेष पार्टी रहा। तो मेरा ये सौभाग्य है कि जब ऐसे 55 वर्ष मुझे हो गए, लेकिन उससे भी 6-7 साल पहले, करीब मैं समझती हूँ 60 वर्ष से भी ज्यादा हो गए जब से मैं दादियों को जानती थी। उस समय तो दादी नहीं कहते थे, उस समय सब बहने थी। और 30 वर्ष की आयु, 35 वर्ष, 32 वर्ष की आयु की सब उस समय पर जो अब सारी है, बड़ी आयु है उनकी, तो उस आयु में आए सभी तो दिल्ली में आते थे। और हमारे लौकिक परिवार में वो कुछ कार्य उनका न होता था, क्योंकि जब इनका 1952 में दिल्ली में आना हुआ तो कोई इतनी जान पहचान तो नहीं होती है शुरू में, परंतु हमारे लौकिक परिवार से उनको कहाँ से एड्रेस मिली पता चला, तो उन्होंने हमारे पास 52 से आने शुरू किया, जिसमें थोड़ी थोड़ी सुविधाएं, कभी मकान सेंटर के लिए टेलीफोन, रेशनिंग, कुछ ट्रांसपोर्ट, कुछ सुविधाएं ऐसी यज्ञ को प्राप्त हो उसके कनेक्शन से बहने आती थी। तो मेरा खुद जब मैंने करीब 4-5 आती थी, कई बार 4, कई बार 3, तो जब भी आती थी तो कुछ हमें पता तो नहीं था, पर बहुत आकर्षण होता था। तो देखते तो ऐसे लगता था जैसे एकदम अलौकिक चेतन्य देवी है। उस समय तो कुछ समझ तो थी नहीं, तब से हमने दादियों को देखा, फिर उनके साथ ही बचपन से हम पले, हमारे अपने जन्मदिन, अपना जो कुछ भी परिवार में होता था सब दादियों के साथ ही मनाते थे। और सबसे पहले हमने ऐसे उन्हीं दिनों में ही कई आत्माएं अपना उनका पाठ पूरा होता है तो शरीर छोड़ते हैं। तो उस समय तक हम लोगों को ये पूर्वज है हमारे, इस तरह की कोई समझ नहीं थी। ये तो हम समझते थे कि बाबा के पास जाएंगे या व्यक्त होंगे, बाबा उनको सूक्ष्म वचन भी रखते हैं, जैसे आज संदेश सुना कि विश्राम करना, बहुत थकी हुई थी आत्मा, तो ये सब बातें तो हम सुनते थे। लेकिन किस तरह से हमारी दृष्टि उनके प्रति, हमारी भावना उनके प्रति ये हो कि हमारी पूर्वज आत्माएं हैं, ये कुछ समय पहले ही जैसे शुरू हुआ है। परंतु कई ये प्रश्न पूछते हैं कि अब जो भी आत्मा यहाँ से जाती है, तो कईयों के बारे में हमने ऐसा सोचा कि वो उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। परंतु एक बार बाबा ने स्पष्ट किया, विशेषकर दादी प्रकाशमणि जी के टाइम बहुत ये भावना थी हम सब की, क्योंकि दादी जी की स्थिति दिखाई पड़ती थी कि वो संपूर्ण है, वो व्यक्त है। और तो बहुत समय लगा हम लोगों को इस बात को स्वीकार करने में, परंतु बाबा ने कहा कि सब एक ही आत्मा ऐसी है जो ब्रह्मा बाबा की आत्मा है, जो पुनर्जन्म संगम पर नहीं लेती है, और अन्य आत्माओं को लेना ही है, उनको अपना पार्ट बजाना है। तो फिर बाबा सुनाते हैं, सबके लिए तो हम लोग नहीं मालूम है, लेकिन वो कहाँ है, किस रूप में है, थोड़ा बहुत इशारा बाबा ने दिया। तो प्रश्न सबको ये उठता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या विशेषता है। तो आप देखेंगे जैसे महात्मा गांधी जी थे, तो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए एक विशेष शपथ ली थी, वो ये कि अहिंसा, जो कुछ भी होगा उसमें नॉन वायलेंस होगी, कोई हिंसा नहीं होगी। तो अभी तक भी सारे विश्व में जहाँ भी हम जाते हैं तो यही विशेषता उनकी कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन स्वतंत्रता का शुरू किया, उस आंदोलन में मुख्य बात यही थी कि वो अहिंसा के ऊपर ही उनका सब कुछ चलता था। तो जो अहिंसा का जैसे ही शब्द आता है, जब भी अहिंसा की बात आती है तो सबसे पहले उनका ध्यान महात्मा गांधी जी की तरफ जाता है। तो आत्मा चाहे किसी भी तन में हो, परंतु आत्मा ने जो गुण, जो विशेषता न केवल यूज की है, परंतु यूज करते करते जरूर जमा भी की होगी। जैसे इतनी परिस्थिति महात्मा गांधी जी के सामने आई, तो उन्होंने अपना कि अहिंसा से ही स्वतंत्रता का आंदोलन चलना चाहिए। तो सारे विश्व में तो वो आत्मा जहाँ भी है, उस आत्मा ने जो कुछ स्वयं के लिए किया, जो कुछ विश्व के लिए किया, जो भी गुण उसका यूज किया, वो जैसे कि सदाकाल के लिए अभी तक भी उसी तरह चलता है। तो इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जैसे हमारी मामा थी, तो एक विशेष गुण सभी पूर्वज आत्माओं में, हर एक में अगर हम एक एक की विशेषता ले ले थोड़ा कि उनमें कैसे था, परंतु एक विशेषता समय थी उनकी त्याग वृत्ति। उनका जो त्याग था उस वक्त इस तरह से नहीं था कि ठीक है घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लेकिन उनका जो त्याग था, या दूसरे शब्दों में कहें कि उनकी जो पवित्रता थी वो बहुत नेचुरल थी। आपने देखा था दादी जी हमारी, तो दादी जी स्नेह मूर्त तो थे, परंतु उनका जो स्नेह था वो इतना पवित्र स्नेह था, न कोई ममता, न कोई स्वार्थ, न कोई लेन देन, न कोई एक्सपेक्टेशन, कुछ भी नहीं, एकदम पवित्र स्नेह था। तो उनकी जो मूर्ति थी जब वो चैतन्य में थी, तो सबको स्नेह का भी अनुभव होता था, और प्रैक्टिकल में हम क्या देखते थे कि वो स्नेह उनका उस पवित्रता के आधार पर था, पवित्र स्नेह था, सिर्फ रूहानी स्नेह नहीं था। रूहानी स्नेह तो हम सबको भी है, लेकिन कभी भी दादी जी के मन में कि ऐसा हो, इससे ये मिले, जैसे मैंने कहा कुछ भी किसी आत्माओं से कोई भी तरह की वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी। हम सभी देखेंगे कुछ भी होता है, थोड़ा देखते हैं कि ये सर्विस टेबल बाबा की आत्मा है तो थोड़ा टेंशन देंगे उसको। तो हमने दादी जी को देखा कि कोई किसी तरह का भी हो, यज्ञ में जो भी है, दादी जी सभी को विशेष प्यार देते। चाहे कभी ऐसा नहीं लगता था कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि इसकी तरफ दादी जी का बहुत स्नेह है और मेरी तरफ थोड़ा कम है। कभी ऐसा सुनने कोई नहीं मिला, सबको ऐसा अनुभव होता था। और विशेष तौर से एक बार चंद्रमणि दादी कहने लगी कि हमें से कुछ ऐसा पार्ट रहा है जो शुरू से कुछ मुख्य सेवा मिल गई, कुछ तो एक जैसे बड़ों के रूप से ही रहे। तो चंद्रमणि दादी हमेशा कहती थी कि आप लोगों को क्या अनुभव है कि छोटे होके कैसे रहना होता है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ तो है ना, चलो सेवा में हम लोगों को ऐसा पार्ट मिलता है, पर आप लोगों के सामने तो हम छोटे होके रहे, आज्ञाकारी होके रहे। पर कहने का मतलब कि दादी जी को भी हर एक के प्रति, कोई किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कहाँ भी हो, छोटे से छोटा भी उसका काम हो, तो दादी को उस आत्मा के प्रति विशेष विशेष प्यार होता था। और दादी की जो ये संभावना थी ना, सबके प्रति प्यार तो था ही, लेकिन एक प्रैक्टिकल नहीं। याद है कि एक बार संत सम्मेलन था, पहली बार हुआ था 1985 में, और उस समय पर हम में से भी कुछ विदेश से भाई बहन आए हुए थे। तो दादी ने किसी ने सबको बोला, तो जो संत महात्मा आते हैं ना, तो वो भोजन जो करते हैं ना, वो घी का खाते हैं सब, उनको तेल का कुछ नहीं खाते हैं। तो दादी ने कहा कि सबका भोजन, जितना भी भोजन बनेगा वो घी में बनेगा, सबको सेम भोजन मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि उनको ये खाना मिले और जो यज्ञ निवासी हैं उनको तो सबके लिए, तो मैं और जयंती बहन हम लोग को घी से थोड़ा सा इतना मित्रता नहीं है, तो हमने उनको कहा क्या हमारे लिए अलग से बना दो तेल में खाना, हम वो खाना पसंद करते हैं। सबके लिए तो चर्चा ही चलती थी, इतने तक कि वो साधु संत महात्मा भी कहते थे यहाँ तो सबको एक जैसा भोजन मिलता है, ये नहीं कि उनके लिए अलग बन रहा है ये बन रहा है। तो एक प्रैक्टिकल में दादी को हर आत्मा के प्रति कि उसे वो स्नेह भी मिले, उसको शक्ति भी मिले, समीपता भी मिले, वस्तु भी मिले, वस्त्र भी मिले, सबके लिए सब कुछ। कोई भी बात होती थी, जैसे देखती थी दादी कि कोई कार्य ऐसा किया, जैसे किसी के मन में कोई इच्छा हुई कि मुझे ये वस्तु चाहिए, तो वो बाजार में गए खरीद के आए, तो दादी कहने लगी कि अगर मेरे को ध्यान गया होता तो ये वस्तु तो मुझे सभी को लेनी चाहिए थी, अगर मैंने सबको दिलवाई होती तो किसी के मन में इच्छा नहीं होती। तो एक बार किसी से छोटी मोटी गलती है तो होती रहती है, तो उससे कुछ गलती हुई, तो दादी ने कहा कि मैं आजकल जिसने गलती की उसको बहुत स्नेह दे रही हूँ। मैंने कहा तो ज्यादा क्यों स्नेह दे रही है? कहा जब उसको ये पता चलेगा कि ये गलती दादी जी को पता है मेरी, तो वो मेरे समीप नहीं आएगा, और वो अगर मेरे से दूर हो गया तो उसके जीवन में जिस तरह से अभी समीप का जो सुख है वो अधिकार समझता है वो नहीं होगा। इसलिए मैं उसको बहुत प्यार दे रही हूँ, जैसे उसको अंदर में ये भूल जाए उसकी गलती क्या है और वो दादी के समीप ही रहे। मैंने इस बात से इतना सीखा कि कभी भी किसी ने कोई गलती की, हम अपनी वृत्ति उसके तरफ ना। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने उसको सोचा कि ये तो रेली धारण करने की बात है, तो ऐसे किसी से ऐसी कुछ भूलें हुई थी तो वो मेरे से मिलने के लिए आए, तो दृष्टि दी, चोली दी। उसके बाद जब वो बाहर गए भाई, तो किसी ने उसको कहा मोहिनी मैं इनको सब कुछ पता है, बोला रियली पता है? तो कहा हाँ उसको सब पता है। तो कहा ऐसा लगता तो नहीं था दृष्टि से? तो मैंने देखा कि दादी जी की वो जो मैंने बात सुनी थी कि अगर किसी से भी कोई गलती होती है, अगर आप उसके मन में थोड़ा भी भावना बदल लेते हैं तो उस आत्मा को उस शक्ति नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात जो एक बार बाबा ने कहा कि अगर किसी की कमजोरी देखते हो किसी का संस्कार देखते हो तो आपकी पालना की शक्ति खत्म हो जाती है। आप उस आत्मा को आपसे कभी पालना नहीं ले सकेगा क्योंकि आपकी दृष्टि में उसकी वो कमजोरी आएगी। तो उस आत्मा को तो चलो जो नुकसान हो, परंतु हमारा अपना भी ये नुकसान हो जाता है कि हमें पालना करने की शक्ति नहीं रहती और वो आत्मा कुछ ले नहीं पाएगी। तो कहने का भाव ये कि जैसे कि एक विशेष था जिसको मैंने कहा पवित्र स्नेह, दादी का ऐसा था आत्माओं के प्रति, सब बाबा के बच्चों के प्रति, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में। तो अगर दादी जहाँ भी है तो दादी की पवित्रता की शक्ति, तो ये जैसे कि जिसको हम एनर्जी बोलते हैं कि ये गुण जो है, क्योंकि हर गुण शक्ति भी है और शक्ति एक गुण भी है। कोई कहता है मैं धैर्यता से काम लो, तो गुण भी है और धैर्यता एक शक्ति भी है। सहनशीलता गुण भी है और सहनशीलता शक्ति भी है। तो किसी ने कहा गुण और शक्ति में क्या फर्क है, तो हमने कहा जितना जितना उस गुण को आप यूज करते जाते हैं वो शक्ति बनती जाती है। सहनशीलता का गुण है, हम सहनशील रहते हैं वो शक्ति बन जाती है। तो शक्ति जो है वो एक तरह की एनर्जी है। तो जैसे अहिंसा की शक्ति का हमने उदाहरण लिया, वैसे दादी जी जो है वो पवित्रता की शक्ति। तो पूर्वज आत्माएं जो भी उन्होंने कुछ, जिस तरह की वो मूर्तियां बनी, जिस तरह की शक्ति का वो स्वरूप बनी, तो वो कहां भी है, जो भी क्या भी पार्ट बजा रही है, क्योंकि ये भी सोचने की जरूरत है वो लोग क्या कर रहे हैं। हम कई बार वतन में जाते हैं ना तो बाबा से पूछते हैं बाबा क्या कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा वो स्थापना के कार्य में आप लोगों को सहयोग दे रहे हैं। पूछते हैं बाबा कैसे सहयोग दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि ये थोड़ी जिज्ञासा रहती है। खासकर वतन में जब बाबा बात करते हैं, बुलाते हैं संगठन को, तो मन में ये थोड़ी सी इच्छा जगती है कि बाबा थोड़ा और कुछ बताए, पर बाबा बहुत बताते नहीं है क्योंकि ये कि कहां कैसे। तो बाबा जैसे कि कैसे वो सुख सारे विश्व में, जैसे आज हम कहते हैं कि हिंसा बहुत है और झूठ और सच में तो कोई फर्क ही नहीं रहा है। झूठ मनुष्य ऐसे बोलते हैं जैसे सच बोल रहे हैं, पूछते भी है अच्छा और बुरा क्या है, ये कहते हैं बुरा क्या होता है, बुरा तो कुछ नहीं होता है, इसका मतलब अच्छा भी बुरा, बुरा भी अच्छा, तो कोई उसकी परिभाषा ही नहीं रही आज की, अच्छा बुरा क्या है, पाप पुण्य क्या है। पाप को तो वो रूटीन कर्म समझते हैं, जिन चीजों को कुछ साल पहले हम पाप कहते थे आज हम कहते हैं, बोलते हैं ये तो प्रथा है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। तो कितना फर्क पड़ गया ना, तो क्या हो गया है कि एनर्जी जो हो गई है वो एकदम नेगेटिव हो गई है, इंप्योर हो गई है, समस्याएं बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। कोई भी एक ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान निकलता, कोई भी नहीं, चाहे कितने भी वो प्लान करते हैं कितना भी करते हैं परंतु कोई समस्या का समाधान नहीं। तो आजकल तो हम सबको यही कहते हैं कि अभी दुनिया फिक्स करने जैसी रही नहीं है, हम वायदा भी नहीं करते हैं, जैसे इलेक्शन में कहीं कि ठीक हो जाएगा, ये तो ठीक होने वाली नहीं है, इसको तो हाँ बाबा ने कई बार मूल्यों में कहा कि हाहाकार होगा क्योंकि परिवर्तन होना है और नई दुनिया बननी है, हम इसको फिक्स कर ही नहीं सकते, हम वायदा ही क्यों करें कहें कि नहीं हाँ विश्व में शांति होगी, पर उससे पहले क्या होगा, हाहाकार बढ़ेगा और उसके बाद फिर हाहाकार बढ़ते बढ़ते फिर जैसे कि विश्व में शांति होगी। तो ये जो पूर्वज आत्माएं हैं, इनकी जो भी विशेषता, जो भी उनकी शक्ति, जो भी उनके गुण जमा है, वो एक वर्ल्ड लेवल पर एनर्जी बनती है। तो एक तरफ अगर हम देखें तो हिंसा इतनी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ हम देखें तो निर्विकारी पवित्रता की जो शक्ति जमा हो रही है, तो उसमें जो जो पार्ट चलता है या जो कलेक्टिव एनर्जी होती है सभी पूर्वजों की और हम सभी के मिल करके, उससे विश्व परिवर्तन का जैसे कि कार्य जो कि गुप्त होता है। तो आज हम लोग जैसे याद यमन चंद्र दादी जी पर दादी जी का भी हुआ, तो बाबा ने संदेश में भी कहा कि एक तो त्याग उनका, चलो जो त्याग था एकदम निर्मोही हो गई, परंतु उन्होंने कभी भी, मुझे याद है जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो हम लोग रात को पता चला, दूसरे दिन सवेरे 9 बजे आ गए थे सब। फिर 3 दिन के बाद जब बाबा का सब अग्नि संस्कार आदि हुआ, भोग लगा 21 तारीख को, हम लोग ऐसे आगे बैठे थे, दादी गुलजार संदेश सुना रही थी। जैसे ही संदेश सुनाया तो 2 मिनट के लिए हम सब के आंसू, थोड़े से ना रोने के बाद नहीं, लेकिन जैसे सबके नैन गीले हो गए। तो मैंने शारदा दादी खड़ी होगी, बाबा कोई अच्छा नहीं लगेगा। निर्मल शारदा दादी खड़ी होगी तो बाबा की लौकिक बेटी है, बाबा कोई आंसू अच्छे नहीं लगेगा। हम लोगों ने सबने एकदम से कंसोल कर लिया। हम उनकी स्थिति को देख करके, पहले तो इनके इनको आंसू आने चाहिए थे, तो फिर निर्मल शारदा दादी हंसी ने हमको सुनाने लगी कि पहले मैं छोटी छोटी बात में मुझे रोना आ जाता था, कोई भी बात होती थी सेंसिटिव थी, बाबा कुछ कहता था, कभी संगठन में कोई बात होती थी तो आंसू आ जाते। तो एक दिन बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा तो कहा, उससे मेरा जो रोने का पानी का नलका था ना वो बंद कर दिया। तो वो बताती थी कि ऐसे सिर पर हाथ रखा, उसके बाद नलका बंद हो गया, अभी उसके बाद मेरे को आंसू आते ही नहीं। पर वो तो चलो एक एग्जाम्पल वो दे रही थी, लेकिन हम प्रैक्टिकल में देखे कि उनकी स्थिति ऐसी थी। मुझे बहुत बाद में मशाला दादी के साथ कलकत्ते में, यहाँ पर भी इंद्रप्रस्थ में हम दोनों रूम शेयर करते थे, कभी वो होती थी कभी मैं, तो बहुत नजदीक से, मतलब हम दादी को बहुत अच्छी तरह से उनका हमने प्यार पाया कि पालना ली। तो हमने देखा कि उनको मान अपमान, निंदा स्तुति, बड़ा छोटा कुछ जैसे भान ही नहीं था। कलकत्ते में गए हम एक बार, तो वहाँ पर दादी परदादी के समान ही एक और भी दादी थी, तो सभी बहनें कहती थी कि दादी जी आप है ना बड़े, तो फिर ये ऐसा क्यों करती है, तो आपसे पूछना चाहिए ना। बार बार आके कहती थी मैंने कि दादी देखो उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपको कहने। दादी कहती कर ले लो ना, ये तो बहुत अच्छा है, कोई भी करे। वो मुझे दृश्य नहीं भूलता है कि दादी को ये नहीं आता था कि मैं बड़ी हूँ, मैं मेन हूँ या मैं इंचार्ज हूँ या ये हूँ, तो ये ऐसे क्यों कर रही। तो वो समान भाव में, तो कभी भी संस्कारों का तो चक्कर देखेंगे। हमारे पास 72 में विदेश से कम्युनिस्ट कंट्री से बहुत बड़ा ग्रुप आया था, 70-80 लोगों का, मधुबन। तो मेरे को बुलाया था जाओ हेल्प करो, और रोजी बहन उन दिनों में होती थी। तो स्वभाव हर एक का अलग ही होता है, कोई मधुरता से रिस्पेक्ट दे करके संगठन को चलाते हैं, और कोई जो है वो अपना पावर रोग अथॉरिटी से चलाते हैं। तो हम तो किसी ने जाके निर्मल शारदा दादी को बोला कि देखो उसकी तो ठीक है नहीं, तो इसका जो है वो बड़ा ज्यादा रोग। तो निर्मल शारदा दादी ने कहा कि देखो अभी आपने एक बार ये देखा, दूसरी बार देखा ना कि इसका ऐसा स्वभाव है आवेश का, तो फिर तो आपको असर ही नहीं होना चाहिए, तीसरी बार देखना ही नहीं चाहिए। नहीं पता था तो देख रहे थे, पता लग गया तो क्यों देखते, समझा। अगर पता है ये क्रोध करता है तो जब करता है आप ध्यान नहीं दो ना कि बार बार देखते रहो, फिर अपने को ये क्रोध करता है, ये क्रोध करता है, कहती तो पता है ना करता है। जिसके स्वभाव का पता लग गया तो फिर उसके स्वभाव का तो असर आने ही चाहिए। तो वो जो पॉइंट देती थी ना दादी पर दादी, क्योंकि न्यारी थी ना इन बातों से, यानी कभी भी मान अपमान की फीलिंग कभी भी ये नहीं होता था मेरी पोजीशन मेरा। हम लोग यही कहते हैं कि आज दादी जी बाबा अव्यक्त थे, तो चाहे थी तो वो कह सकती थी आंगन में कुर्सी पे बैठ के कि अभी मैं हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगी। और बड़े बड़े गुरु हैं, सभी गुरुओं की या लड़की या लड़का सब आश्रम चला रहे हैं। पदारी ने जैसे ही पदर बाबा का संदेश आया कि प्रकाशमणि दादी निमित बनेंगी और सबके नाम आए, उन्होंने कभी भी उनके चेहरे पर इतना भी फीलिंग नहीं आई। तो इसको क्या कहेंगे, मान अपमान से ऊपर थी, जय पराजय से ऊपर थी। हमारे पास भी विदेश में वो एक बार आई थी, तो एक जो चेहरा तो था ही, लेकिन उसके अलावा देखो एक होता है चेहरे से सेवा होती है, परंतु जो मूर्ति अंदर में थी जिसने भाव स्वभाव मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी भी दुख सुख कुछ भी परिस्थिति आती थी वो मुस्कुराती रहती थी और इतना हंस के इतनी अच्छी तरह कोई भी शिक्षा देती थी। क्योंकि क्या होता है जब कोई भी बात होती है ना हम सुनते हैं तो पहले हमारी फीलिंग अफेक्टेड होती है फिर हम कहते हैं, तो उन शब्दों में क्योंकि फीलिंग मिक्स होती है ना, परंतु परदादी को जैसे वो फीलिंग नहीं आती थी तो वो कहती थी तो इतना मीठा लगता था, कोई भी शिक्षा देती थी इतनी प्यारी लगती थी। सोचते थे बोले कुछ और भी बोले, नहीं तो कई बार जब करेक्शन मिलती है तो समझते हैं ये हमको क्यों मिलती है। तो हम ये सोचते हैं ये जो विशेषता थी परदादी की, हाँ बहुत सारी कहानी है। एक बार कलकत्ते में एक रिपोर्टर ने जर्नलिस्ट ने अखबार में ब्रह्मा बाबा के बारे में कुछ डाला, गलत डाला, व्यापारी नहीं कुछ और चर्चे किए तो ये था नहीं, जैसे बड़ा लो स्टेटस दिखाया। दादी को अच्छा नहीं लगा, उसने कहा कि अरे इसको तो मालूम नहीं है तो इसको बताना चाहिए ना, तो मैं इसको बुला के समझाऊंगी या फिर हम भी न्यूज पेपर में डाले। उन्होंने ब्रह्मा बाबा को लिखा कि बाबा देखो उसने ऐसे से लिखा है और मेरे को ऐसा संकल्प आया। तो बाबा ने कहा बेशक वो तो स्पष्ट तो करना ही चाहिए, लेकिन इस तरह से करो जैसे जो लिखत बनाओ वैसी बनाओ, जैसे आप लोग रिएक्शन नहीं ले रहे, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे। मैं ये बात इसलिए सुना रही हूँ कि आज हमारे हम लोगों के भी प्रति इंटरनेट में इधर उधर कितनी बातें आती है, कोई विरोध करते हैं कोई निंदा करते हैं, और कभी भी बाबा की शिक्षा अनुसार हम वो उस तरह से नहीं कर सकते। हमारी लिखत हमारे शब्द सब इस प्रकार से होने चाहिए जो बिल्कुल संतुष्टता के हो। तो कहने का मतलब कि धैर्यता मधुरता संतुष्टि उसकी परदादी जैसे कि मूर्ति थी, और उनका यज्ञ में एक एक दिन होना, क्योंकि ये भी प्रश्न हमसे कई पूछते हैं कि आज दादियों की तबीयत ऐसी होती है, हम लोग भी कई बार सोचते हैं। दो तीन दिन पहले ही हम लोग सोच रहे थे कि हम अपनी विल में लिखना चाहते हैं कि कितने दिन हमको शरीर को आप वेंटिलेशन में रखो या कितने दिन, क्योंकि हम तो ऐसे समझते हैं हम योगी की तरह जैसे सामने तो बाबा ही रहता है, जैसे ब्रह्मा बाबा थे उन्होंने अपना क्लास कराई, उन्होंने ड्यूटी की, कुछ कहा भी नहीं, गए कमरे में और जैसे पंछी जो है वो उड़ा, दादी को हाथ दिया, तो हम अपने सामने ऐसे ही रखते हैं कि इस तरह से आत्मा शरीर से निकले। तो हम कभी कभी ये प्रश्न पूछते हैं, हमसे कई फॉरेनर्स भी पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तो एक एक दिन उन आत्माओं की उपस्थिति यज्ञ में, यज्ञ के लिए स्थापना के कार्य में उनकी शक्ति का सहयोग है। तो बेशक हम शरीर को देखते हैं परंतु हम तपस्वी आत्माओं को अगर उस रूप में देखें कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है एक एक दिन यहाँ रहना, जैसे हमारी दादी जी थी तो हम लोग कई बार दादी जी से बहुत ओपनली बात पूछते थे, तो दादी जी यही कहती थी कि जिस दिन तक भी जैसे जैसे जितना भी आत्मा को इस यज्ञ के प्रति बाबा की याद से योगदान देते रहे, क्योंकि स्थापना के कार्य में यज्ञ का ही तो मुख्य महत्व है ना, तो कभी ऐसा संकल्प आएगी कि शरीर को इस तरह से क्यों रखा जाता है या इस तरह से क्यों मेडिकल का भी कईयों को आता है, तो क्योंकि आत्मा जो है, बेशक आत्मा जब शरीर छोड़ के अव्यक्त होगी दूसरा पार्ट बजाएगी तो अपने तरह से विश्व में कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी शक्तियाँ उनके गुण। परंतु जब आत्मा शरीर में है और यज्ञ से डायरेक्टली वो जन्म संबंधित है तो उनकी जो शक्ति है उनकी जो गुण है उस जो प्राप्ति उससे होती है उसकी भी यज्ञ को बहुत आवश्यकता है। तो इस तरह से जो भी पूर्वज आत्माएं हैं, हमने कई आत्माओं को जैसे हमारी कुंजारी थी तो हमने देखा उनको कि वो जैसे ज्ञान सुनाने में पॉइंट सुनाने में विस्तार में जिस ढंग से वो समझाती थी ना दादियों का तो आप लोगों को कुछ को तो पता भी होगा। तो जब वो शुरू शुरू में बाबा मुरली चलाते थे जब तक वो यज्ञ में थे बाद में भी उनकी डायरियां पढ़ने जैसी होती। हमारी रुक्मणी डायरी जो दिल्ली में है आजकल उनका स्वास्थ्य भी इतना अच्छा नहीं है। उनके पास 110 पॉइंट थी सर्वव्यापी पर समझाने की। हर एक दादी के पास गीता का भगवान नहीं कम से कम 100-100 पॉइंट उनके डायरी में लिखो जो स्टडी करते थे। तो कोई भी आता था विद्वान आए कुछ आए 110 पॉइंट तो बहुत होती है। आप 5 सुनाओ 6 सुनाओ तो उनके पास 3 पॉइंट थी। तो जो बाबा ने ज्ञान दिया उसको वो इस तरह से एक एक टॉपिक को लेकर के जो भी टॉपिक समझाने के होते थे परमात्मा का परिचय देना है उनके पास 40 पॉइंट्स होंगे। आत्मा का परिचय देना है और बहुत अच्छी डायरी है बहुत अच्छे शब्दों में बहुत अच्छे नोट्स की कोई भी अच्छी तरह से पढ़ सके। तो ये भी मैंने उनकी विशेषता देखी कि जैसे एक सब बचपन तो था ही जो उनको बाबा से इतना प्यार मिला परंतु एक स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने देखा तो उनके अंदर ये बहुत बहुत विशेषता नहीं। तो पूरा जात में जहाँ भी जैसे भी पाठ बजा रही है परंतु उनकी जो भी जमा की हुई शक्ति है वो इस समय पर विश्व परिवर्तन का कार्य गुप्त तरीके से जैसे कर रही है। आजकल समय ऐसा है किसी को भी कुछ कहो तो कोई करे भी ना भी कर सकेगा क्योंकि शक्ति नहीं है। लेकिन अगर जो एग्जाम्पल है ना खुद एग्जाम्पल है और वो कर रहा है तो दूसरे को प्रेरणा मिलती है और जब प्रेरणा मिलती है तो कार्य करने में मुश्किल नहीं लगता क्योंकि अंदर की सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है ना वो कर लेता है। तो दादियों का जो उदाहरण था उससे प्रेरणा मिलती थी। जैसे हमारी मामा थी हमने मामा को देखा देखते ही ऐसा लगता था एक मिनट नहीं आता है कि कन्या है ऐसी जीवन हमारी हो हम भी ऐसे ही समर्पित हो जैसे मामा। पहले ही थॉट ही आता था मामा तो कहती भी नहीं थी। एक बार भी मामा ने मुझे नहीं याद है कभी मुझे कहा बच्ची तुम्हारा क्या विचार है समर्पित का तुम्हारा क्या फ्यूचर है। नहीं हमने मामा को देखा हमने कहा ये हमारे सामने एग्जाम्पल है हमको तो ऐसे ही करना है। तो जो एग्जाम्पल प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो उसको देख करके जैसे एकदम प्रेरणा आती है और जब प्रेरणा आती है तो कोई भी काम करने में कुछ भी चेंजेस लाने में ट्रांसफॉर्मेशन में उससे कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए मामा की एक बहुत अच्छी बात मामा जब भी समझाती थी ना क्योंकि मामा की ड्यूटी यही थी कि सब आते थे मामा को समझाना है बाबा ऐसे कहता है बाबा ने इस बात के बारे में ऐसे कहा मैं कहती हूँ तुम ऐसे करो मैंने ऐसे कभी नहीं कही। कभी मामा ने ये नहीं कहा कि मैंने ऐसा समझा मैं कह रही हूँ या मैं श्रीमत दे रही हूँ डायरेक्शन दे रही हूँ कभी नहीं। इतना अच्छा लगता था समझाती थी देखो बाबा ने ऐसे ऐसे समझाए हैं बाबा इस बात के बारे में ऐसे कहते हैं बाबा की ये शिक्षा है। नहीं तो अथॉरिटी तो मामा थी ना परंतु उन्होंने अपनी अथॉरिटी नहीं बाबा क्या कहते हैं बाबा क्या कहते हैं तो वो जो स्मृति दिलाती थी उस स्मृति से शक्ति आती थी। मैं कहती हूँ आप करो तो आपको शक्ति कौन देगा मैं तो नहीं दूंगी ना तो बाबा देगा ना। ये वेरी अंडरलाइन करने की बात है कि किसी को भी कुछ कहना है तो बाबा की श्रीमत है तो बाबा ऐसा कहते हैं बाबा ऐसा सुनाते हैं बाबा ऐसा समझाते हैं तो उसकी बुद्धि क्या है जाती है बाबा की तरफ, और अगर उसकी बुद्धि बाबा की तरफ जाएगी तो शक्ति मिलेगी। जैसे आज सवेरे बाबा ने बुद्धि योग और बुद्धि का संग पर समझाया, तो बुद्धि का योग बाप से है तो विकर्म नष्ट होंगे, और संग आजकल संग देखो तो एक चलो ऐसे व्यक्ति का संग जहाँ फालतू हो, फिर कभी किसी वस्तु का संग हो जाता है। आजकल मनुष्य कंप्यूटर है, चलो एक तो जरूरी है, एक कंपनी हो गई है, जैसे सेल फोन कंपनी हो गई है, संग हो गया है। जैसे बुद्धि जाती है, फोन आ रहे हैं आ रहे हैं, आता है जाता है, तो बुद्धि जो है ना वो तो बुद्धि का संग। तो मामा की मुझे ये इतनी अच्छी लगी जब मामा समझाती थी हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा समझाना, हमारा बोल, हमारा संग सबकी बुद्धि को कहाँ ले जाए, बाबा की तरफ। क्योंकि अगर उसकी बुद्धि किसी में भी, हमारे में या वस्तु में या साधन में, जो बाबा कहते हैं कि साधन साधना करनी है साधन में, उस साधन में बुद्धि चली जाती है, हमारे पास कहीं है टाइम कैसा, उससे भी ऑनेस्ट होना पड़ता है ना, कि अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं, फोन से लंबी लंबी बात कर रहे हैं, कंप्यूटर में ऐसे एक्स्ट्रा बैठे रहते हैं, जरूरी काम नहीं है, तो ये बुद्धि का संग भी होता है, और अगर समर्पित है तो ऑनेस्टी के भी जैसे कि वो कमी हो जाती है। तो इससे एक एग्जाम्पल बनने के लिए हमारी जितनी भी पूर्वज है वो एक एग्जाम्पल थे, एक एक बात है, किसी का भी लीजिए। हम आपको मालूम है ऑलराउंडर दादी का बहुत एग्जाम्पल देते, कई हमसे पूछते हैं कि ऑलराउंडर दादी को ऑलराउंडर नाम क्यों मिला, पता है आप लोगों को क्यों मिला, मालूम है क्यों मिला? अच्छा, तो बाबा यज्ञ में कोई ऐसे ऐसे काम होते थे जो सब नहीं करना पसंद करते थे, अभी भी नहीं करना पसंद करते, बोलते हमारे स्टेटस से कम है ये। कोई कभी कर्म योग होता है, हमने तो सब दादियों को देखा, भोजन बनाते थे, सफाई करते थे, सब कुछ, सबने सब कर्म योग किया, पर कई बार कम ऐसा होता था, तो उन दिनों में यज्ञ में कोयला यूज होता था, कोयला समझते है ना, कोयला, वो कोयला ही बोलते है ना, तो जब वो यूज हो जाता था ना, फिर एंड में चूरा बचता था बहुत सारा, तो चूरा बचता था, तो देखो इतना बड़ा टन आएंगे तो जो चूरा भी तो एक टन होगा ना जो बच रहा था। तो उन दिनों में यहाँ पर गांव में भी अभी भी करते हैं, तो उसमें वो गोबर मिला के उसके बॉल्स बनाते थे, या ऐसे फ्लैट ऐसे बना के फिर वो खुल आग में डालते थे, तो वो धीरे 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 आग जलती भी रहती है और ज्यादा समय चलती है। तो बाबा ने पूछा कौन करेगा ये, सब बाबा के रॉयल बच्चे थे, तो सब एक दूसरे को देखने लगे, ये तो हमने कभी नहीं किया है, हमने ये कोयले के ये कभी नहीं बनाया, वो भी गाय का उसमें वो डाल के। तो ऑलराउंडर दादी ने हाथ खड़ा किया, बाबा मैं करूंगी। तो बाबा ने कही बहुत सीखी नदी है, तो ऑलराउंडर उसको नाम दिया, पर उसने किया, फिर दो तीन और नहीं किया, क्योंकि ऐसा काम, पर उससे यज्ञ की बचत कितनी हुई, उससे यज्ञ को कितना हर तरह से, आज हम लोग भी हम सोचते हम धन से तो कुछ नहीं कर सकते, पर कोई भी काम करके थोड़ी सेविंग कर दे तो कम से कम हमारी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। हम लोगों को ये शुरू शुरू में बचत की इकोनॉमिकली, चलो एक ही बैग से अगर दो कप बन सकते हैं, हम कभी एक नहीं बनाएंगे, हम दो इसलिए बना देते हैं, हम कहते हैं चलो ये हमारा यज्ञ में चला जाएगा, क्योंकि हम धन से, हमारे पास तो धन नहीं है ना पर्सनली, परंतु धन के उपयोग में अगर हम कुछ भी संभाल के करके कंट्रीब्यूट करते हैं, बचत करते हैं, यही हम लोगों ने सीखा, किससे सीखा, अपनी पूर्वज आत्माओं से। तो पूर्वज आत्माओं ने एक एग्जाम्पल हर चीज का, कि यज्ञ क्या है, यज्ञ की संभाल क्या है, ऑलराउंडर कैसे बनना है, मीठा कैसे बनना है, किस तरह की पवित्रता हो, किस तरह का स्नेह हो, तो सब दादियां जो थी उनमें से ये सब विशेषताएं, तो जहाँ भी जो भी वो पाठ बजा रही है, और हमें भी पता है कि हमें से बहुत ही आत्माओं का उनके साथ पाठ रहेगा, तो जितना जितना पूर्वज आत्माएं, आपने ये तस्वीर देखी है ना आजकल, जो पूर्वज आत्माओं की रवि जानकी को बहुत प्रिय लगती है, जिनको हम आह्वान करते रहते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो हमको मिलती रहे, तो इसलिए ये कनेक्शन पूर्वज आत्माओं के साथ इस तरह से उनको एग्जाम्पल देख के उन्होंने यज्ञ के प्रति कैसे सारा इतना स्थापना का कार्य किया। शुरू में तो बहुत डिफिकल्टीज थी, अभी तो सब सहज है, साधन बहुत है, परंतु हम लोग हमेशा उन्हीं के एग्जाम्पल्स को लेके अभी तक भी हर चीज कदम कदम पे याद आता है, दादी जी कैसे करती थी, मनमोहिनी दीदी कैसे करती थी, बाबा ने कैसे किया, मामा ने कैसे किया, परदादी ने कैसे किया, जैसे वो बार बार न केवल शब्दों से परंतु उनके एग्जाम्पल्स जो है वो हम सबके सामने आते रहते हैं। तो इस तरह से हमारी याद, पूर्वज, उनसे जो कनेक्शन है उनके जीवन से, सबके जीवन से हम सबको ये प्रेरणा मिलती है। इसलिए तो अभी दादी जानकी जी आएंगी और किताब बनी हुई है ना इंग्लिश में, पता नहीं अभी बन चुकी है ना, जिसमें सभी दादियों का एक एक की बहुत हिस्ट्री है इंग्लिश में, ये है दिल्ली से, बहुत मोटी ये किताब है। हम तो बैठ के जब आई थी ना तो रोज रात को वही पढ़ते थे, एक एक दादी की जीवन कहानी, उनका त्याग, उनकी तपस्या, कैसे वो संपन्न संपूर्ण बने, उनकी जीवन यात्रा रूहानी कैसे रही, तो वो किताब बहुत अच्छी है, जिसमें सब पूर्वजों की स्टोरीज है, तो वो पढ़ने से भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। ओम शांति।